بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالعلیم صاحب خطیبی ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الی یوم الدین، اما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کچھ معاشرتی بیماریاں ہوتی ہیں، سوسائٹی کی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، جن بیماریوں سے پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے اور اس کے برے اثرات پورے معاشرے پر مرتب ہو جاتے ہیں. ان بیماریوں میں سے اہم بیماری ہے، وہ ہے جھوٹ بولنا. جھوٹ جو ہم بولتے ہیں آپس میں، کسی چیز کو جو اس کی حقیقت ہے اس کے الٹا بنا کر پیش کیا. مثلا ہم نے کوئی چیز لی ہے کسی کی اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں لی ہے، تو ایک حقیقت کو الٹا بنا کر پیش کرنا، اس کو جھوٹ کہتے ہیں. تو یہ جھوٹ ایک خطرناک معاشرتی بیماری ہے جس کا اثر خالی جھوٹ بولنے والے کی اپنی زندگی پر نہیں پڑتا ہے بلکہ پوری سوسائٹی پر اس کا اثر پڑتا ہے. جھوٹ جو بولتا ہے اس کی تو عزت خاتمے میں ہی جاتی ہے. ایک مرتبہ کسی بڑے سے بڑے باوقار شخصیت کے بارے میں پتا چل گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تو سامنے والے کے دل سے اس کی عزت، اس کی اہمیت، اس کا وقار وہ گر جاتا، ختم ہو جاتا ہے. پھر دو کوڑی کی عزت اس کی رہتی نہیں ہے. ایسے ہی جو جھوٹ بولتا ہے سامنے والا پھر اس پر کبھی بھروسہ نہیں کرتا، وہ اپنا اعتماد کھو دیتا ہے. ایسے ہی جھوٹ بولنے والا ایک مرتبہ جب جھوٹ بولے گا تو پھر یہی لت اس کو لگ جائے گی اور بار بار جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے. پھر اس کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے. نفاق کا مطلب یہ ہے کہ اندر کچھ ہے زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، اندر کچھ ہے زبان سے کچھ کہہ رہا ہے. یہ جو صفت پیدا ہوتی ہے اس کو نفاق کہتے ہیں. یہ بھی اس کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے. ایسے اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے. آپسی تعلقات، کتنے تعلقات جھوٹ کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں. معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے جھوٹے الزامات کی وجہ سے. کتنے بے گناہوں کو مروایا جاتا ہے، کتنے بے گناہوں کی زندگیوں کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے مفلوج کر دیا جاتا ہے. کتنی جنگیں ہیں جو جھوٹ کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں. آج کے زمانے کے حالات کا جائزہ لے لیں تو کتنے اسلامی ممالک ہیں جن کو جھوٹے الزامات کی وجہ سے برباد کر دیا گیا. آج جھوٹ ایک فیشن بن چکا. حدیث میں کہا گیا تھا ستکون سنوات خداعات کذابات، ایسا زمانہ آنے والا ہے دھوکے کا زمانہ، جھوٹ کا زمانہ. ایک فیشن بن چکا ہے جھوٹ. پوری میڈیا جھوٹ پر قائم ہے. سیاست دانوں کا کاروبار جھوٹ پر چلتا ہے. تو یہ جھوٹ ایک فیشن بن چکا ہے، ایک وبا کی طرح عام ہو چکا ہے. سچ بولنے والے کی جان خطرے میں رہتی ہے. سچ بولنے والا معاشرے میں بدنام رہتا ہے. سچ بولنے والوں پر غلط انگلیاں اٹھتی ہے. یہ جب دنیا کے حالات بن جائیں تو پھر کون سی خیر کی امید دنیا سے رکھی جا سکتی ہے. اسی لیے اسلام نے ہمیشہ جھوٹ سے لڑائی کی، سچائی کی دعوت دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ نے کہا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ، سچا بنو اور سچوں کے ساتھ رہو. ان دونوں باتوں کی تلقین کی گئی اور سچوں کی تعریف کی گئی. وصادقین وصادقین انما يفتري كذب الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون بالله والآخرة واولئك هم الكاذبون. کہا کہ جھوٹ بولنے والے وہ ہیں, جھوٹی بات کرنے والے وہ ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, اور یہی لوگ جھوٹے ہیں. بنیاد بتا دی کہ جھوٹ کہاں سے ابلتا ہے. اللہ پر اگر ایمان کمزور ہو جائے, اللہ کی طاقت سے یقین ہمارا کمزور ہو جائے, اللہ کی ذات سے ہماری توجہ ہٹ جائے, تو پھر جھوٹ بولنا آسان ہو جاتا ہے. آخرت میں اللہ کے پاس حساب دینا ہے, ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کے ہاں نوٹ کیے جاتے ہیں, یہ احساس ختم ہو جائے تو پھر جھوٹ بولنا آسان ہو جاتا ہے. ایسے ہی قرآن نے جھوٹ کو منافقوں کی علامت قرار دیا. منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ کہلاتے تھے جو دل سے تو ایمان رکھتے نہیں, دل سے مومن نہیں ہوتے تھے, دل کے اندر ان کے ایمان نہیں ہوتا تھا, لیکن مسلمانوں کے سامنے آتے تھے تو اپنے آپ کو مومن کہتے تھے, مسلمان کہتے تھے, ان کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے, ان کی مجلسوں میں شریک بھی ہوتے تھے, لیکن جب پھر کافروں کے ساتھ ملتے تو کہتے تو ہم تو آپ کے لوگ ہیں, ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے. تو ان کو منافقین کہا, اور منافقین کو جھوٹوں کو منافقین کو قرآن نے جھوٹا قرار دیا. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون, اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ منافق حقیقت میں جھوٹے ہیں. سب سے زیادہ جھوٹی قسمیں اٹھانے والے یہ منافق تھے. یحلفون باللہ انہم لمنکم وما هم منکم, وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ وہ تم میں سے ہیں, اللہ جانتے ہیں کہ وہ تم میں سے نہیں ہے, یہ جھوٹے ہیں. یہ اللہ نے اس کو منافقوں کی علامت قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا, منافقوں کی تین نشانیاں بتائی, بعد میں دوسری بھی بتائی گئی, اس میں سے جو پہلی نشانی بتائی, اذا حدث کذب, جب بھی بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, یہ منافقوں کی علامت ہے. اور منافق یہ مسلمان نہیں ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے بہت سارے حصے ہیں, سب سے جو نچلا حصہ ہوگا یہ منافقین کے لیے ہوگا. اس لیے کہ یہ کفر بھی کرتے ہیں اور دھوکہ بھی دیتے ہیں. مشرک جو ہوتے کھلا کھلا اپنے آپ کو کافر کہتے تھے, اور یہ منافق جو ہوتے تھے یہ دھوکہ بھی دیتے تھے, اپنے آپ کو مومن بھی کہتے تھے اور اندر سے کافر بھی رہتے تھے. اس لیے ان کا جو عذاب ہے وہ سب سے بڑا ہوا ہے. تو اسلام نے جھوٹ کا بہت سختی سے مقابلہ کیا, اور اس کو کافروں اور مشرکوں کی علامت قرار دیا. اس کی وجہ یہی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. تنزل علی کل افاک اثیم, کہا کہ شیطان جھوٹوں کے دماغوں پر قبضہ کرتا ہے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم, کہا جھوٹوں پر شیطان مسلط رہتا ہے, شیطان کو اپنی فوج جھوٹوں کی صورت میں نظر آتی ہے, اور شیطان اپنی جو فکریں ہوتی ہے اور اپنا جو پلان ہوتا ہے وہ جھوٹے لوگوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں نافذ کرتا ہے. تو یہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں یہ شیطان کے آلہ کار ہوتے ہیں. اس لیے آدمی جھوٹ بولتا ہے پھر وہ تمام گناہوں کی طرف آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا کہ ان الكذب يهدي الى اللهدي الى الفجور وان الفجور لا يهدي الى الجنه الى جهنم او الى وان الكذب لا يهدي الى النار او كما قال عليه الصلاه والسلام. فرمایا جھوٹ یہ برائیوں کی طرف لے جاتا, तो इसलिए हदीस में साफ इरशाद फरमाया कि ये झूठ लोगों को बुराइयों की तरफ ले जाता है, गुनाहों की तरफ ले जाता है, बेहयाई की तरफ ले जाता है, गलत कामों की तरफ ले जाता है। और ये बुराइयां, बेहयाइयां, गलत काम ये इंसान को आग में डुबा देते हैं, जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। तो इसलिए झूठ के सिलसिले में बहुत बेदार रहने की जरूरत है। अब झूठ की बहुत सारी शक्लें होती हैं, अलग अलग किस्म का झूठ होता है। अल्लाह के सिलसिले में भी लोग झूठ बोलते हैं, अल्लाह की तरफ झूठी नस्बतें करते हैं, गलत गलत सिफात अल्लाह की तरफ मनसूख करते हैं, कहते हैं कि ये फला ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करने वाले हैं, ये अल्लाह के साथ शरीक है। तो अल्लाह की तरफ झूठी नस्बत करते हैं, गलत चीजों को अल्लाह की तरफ मनसूख करते हैं। बल्कि कुछ लोगों की जुर्रत यहां तक बढ़ जाती है कि मसले मसाए अहकाम को अपनी तरफ से बयान करते हैं और उसको अल्लाह की तरफ मनसूख करते हैं। बहुत बड़ा झूठ। وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ कहते हैं कि तुम्हारी जुबान जैसे हरकत करे उसके मुताबिक कभी ये मत कहो ये हलाल है ये हराम है, ताकि अल्लाह पर झूठ बांधने लगो। यानी अपनी तरफ से हमें मसला मालूम नहीं, हमें तहकीक नहीं है, अपनी तरफ से हम किसी के बारे में भी देखें ये जायज है ये नाजायज है। तो कुरान ने कहा कि ये अल्लाह की तरफ झूठी बात मंसूख की जा रही, इसलिए कि मसला बताना ये अल्लाह का हुक्म बताना है। गलत बताएंगे तो अल्लाह की तरफ झूठी बात हम मंसूख करेंगे, और ये सबसे बड़ा झूठ है। وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا सबसे बड़ा जालिम वो है जो अल्लाह की तरफ झूठी बातों को मंसूख करता है। ऐसी झूठ की एक किस्म अल्लाह के रसूल की तरफ झूठी बातों की निस्बत करना, हदीसें अपनी तरफ से तैयार करके कहना कि अल्लाह के रसूल ने बयान की है झूठे हदीसे, ये भी एक फंड है। तो हदीस बयान करना है तो पहले तहकीक करनी है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान किया है या नहीं किया। किसी भी हुक्म को, किसी भी सुन्नत को बगैर तहकीक के हम सुन्नत कहकर अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूख करेंगे तो ये झूठ। खाने बैठते हैं, खाने का आदाब बता रहे, अब उसमें अल्लाह के रसूल की तरफ चीज को मंसूख करते हमें मालूम ही नहीं। सोने के आदाब है या दूसरे माशरती आदाब है, अपनी तरफ से उसमें बातें मिलाकर उसको अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूख कर देते, ये भी झूठ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया मन कदब अलैय मुतअम्मिदन फलयतबव्वअ मक़ादहु फिन्नार, जो जानबूझकर मुझ पर झूठ गढ़ता है उसको अपना ठिकाना जहन्नम में बनाना चाहिए। काम मेरे बारे में झूठ बोलना आम आदमी के बारे में झूठ बोलने की तरह नहीं है। इन किस्बन अलैय लैसे लक किस्ब अहदिकुम औ कमा قال अलैहि सलातु वसलाम, मेरे बारे में झूठ बोलना, झूठी चीज को मेरी तरफ मंसूब करना आम आदमियों के साथ झूठ बोलने की तरह नहीं है, यानी उसका आजाब तो बहुत बड़ा हुआ। तो अल्लाह के रसूल के साथ भी झूठ बोलते हैं। और सबसे बड़ा झूठा कारोबार कहां चलता है? आपस में बंदों के साथ जो ताल्लुकात होते हैं उसमें ज्यादा झूठ का कारोबार चलता है। बहुत सी शक्लें हैं, तफसील का मौका नहीं। मसलन कभी तफरी में झूठ बोलते हैं, मजाक करते हैं, तफरी की मजलिस लगती है, अब उसमें कातरे छोड़ दे जापान की, ईरान की, तुरान की छोड़ते रहते, ये भी झूठ है। इस हदीस में तो यहां तक फरमाया गया कि मैं युहद्दिसु बिहदीसी लियुज़हिका बिहिल क़ौम वैलुल लिमन युहद्दिसु बिहदीसी लियुज़हिका बिहिल क़ौम फयकज़िब वैलुल लहु वैलुल लहु, तीन तीन मरतबा कहा। बर्बादी है उस शख्स के लिए जो कोई बात बयान करता है, लोगों के हंसाने के लिए कोई बात बयान करता है और उसमें झूठ बोलता है, कहा उसके लिए बर्बादी है, उसके लिए बर्बादी है। आम मजलिस में, तफरीक की मजलिस में हम बैठकर झूठ बोलते हैं लोगों को हंसाने के लिए, किसी की नकल उतार देते हैं, कहा यह भी झूठ है। तो इससे भी एहतियात करना चाहिए। और मजाक मजाक में बाज मरतबा बाज लोगों की जान भी चली जाती है। किसी को फोन करके बता देते हैं अप्रैल पूरी करने के लिए कि तुम्हारा बेटा इंतकाल कर गया, अब बेचारा वही हाथ पकड़कर बैठ गया। ऐसे कितने वाकयात पेश है, मजाक के लिए झूठ बोल दिया लेकिन सामने वाले पर उसका जो असर पड़ा से उसकी सेहत खराब हो गई, इससे बड़ा असर पड़ता है माशरे में। तो मजाक में भी झूठ बोलने से रोका गया। ऐसे छोटे बच्चों को झूठ की तरबियत करवाते हैं। कैसे? घर में कोई आता है पूछने के लिए, अब्बा जान है? अब घर से अंदर से कहलाकर बच्चे बोलो नहीं है बोलो, घर से कहला करो पापा नहीं बोलो साहब। अब वालिद जब बेटे से कहेगा अंदर होते हुए कि मैं नहीं हूं, बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं? क्या ऐसे आप भी झूठ बोलिए? बच्चों की तरबियत झूठ के साथ हम करवाते हैं। यहां तक हदीस में रोका गया, किसी को हम बुलाते हैं बेटा आओ चॉकलेट देंगे, वो आता है कि चॉकलेट नहीं देते हैं, कहा ये भी झूठ है, ये भी धोखा है। एक सहाबिया एक बच्चे को बुला रही थी कि मैं खजूर देना चाहती हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा तुम किस लिए बुला रहे, सचमुच उसको खजूर देगी? कहा मैं दूंगी। कहा कि अगर तुम नहीं दोगी तो तुम्हारे नामे आमाल में झूठ लिखा जाएगा कि तुमने बच्चे को बुलाया कि हम चॉकलेट देंगे हम खजूर देंगे फिर नहीं देते, ये भी झूठ है। तो बच्चों से भी उनको बुलाने में उनको सिखाने में झूठी बात करना ये भी गुनाह है। ऐसी तीसरी शक्ल जो सबसे बड़ा कारोबारी शक्ल होती है, सबसे बड़ा झूठ उसमें होता है, सबसे ज्यादा झूठ। आपस में कारोबार करते हैं तो हम समझते हैं कि इसमें तो झूठ बोलना बिल्कुल जायज, बिल्कुल कहते हैं इधर का माल उधर का, उधर का माल इधर का, कस्मों पर कस्में खाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल बयान बिल खियार मा लम यतफर्रका। मसला है कि जो आपस में तिजारत करते हैं, बोली हो रही है, जब तक अलग ना हो जाए दोनों तो उसमें इख्तियार रहता है कि हम अब डील हो गई दोनों मजलिस में है, अब वापस जाने से बोले कहता कि नहीं मुझे नहीं चाहिए तो वो वापस कर सकता है। तो अब उस सिलसिले में कहा कि फइन सदका वो बैना बूरी का लहुमा फी बैतिहिमा, अगर दोनों खरीदो फरोख्त करने वाले सच्चाई पर अपनी तिजारत करते हैं और जो चीज है बिल्कुल क्लियर बयान कर देते ये ऐसा है ये ऐसा है, कोई आयत छुपाते नहीं है, तो कहा कि उनके कारोबार में बरकत होती है। सच्चाई पर जो कारोबार होता है उसमें बरकत होती है। फइन कज़बा व कतमा मुहिकतिल बरकतु मिन बैनिहिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, कहा कि अगर झूठ बोलेंगे और आयत को छुपा कर रखेंगे तो उनके कारोबार से बरकत खत्म हो जाएगी। ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो कारोबार में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ही कभी झूठ एक शक्ल होती है दोनों को लड़ाने के लिए, उसके पास जाके ऐसा बोल रहा हूं देखो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है, उसके पास जाके ऐसा बोल रहे हो तुम्हारे पास ऐसा बोल रहा, अब आपस में इंतजार फैलाया जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती से रोका कि इन शर्र नासी सुल वजहैन यती हाउलाई बिवजहिन व हाउलाई बिवजहिन, कहा सबसे बदतरीन लोग वो है जो दो चेहरे वाले हैं, फलस्काती बोलते हैं दो चेहरे वाले हैं, इसके पास एक मुंह लेकर जाते हैं उसके पास एक मुंह लेकर जाते हैं, यानी इनके पास जाके कुछ कहते हैं उनके पास जाकर कुछ कहते हैं, मकसद क्या है? आपस में लड़ाना, इंतिशान पैदा करना। कहा कि ऐसे लोग बदतरीन लोग हैं जो माशरे को तोड़ते हैं, माशरे के अंदर बिगाड़ और करप्शन पैदा करते हैं, इनसे भी रोका गया। एक शक ये भी है जिससे दुश्मनी होती है अब उसके बारे में भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, ये समझते हैं कि जो दुश्मन होगा उसकी तरफ हर झूठ की निस्बत आसान हो जाती है। हालांकि कुरान में साफ इरशाद फरमाया वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू, किसी की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर न उभारे कि तुम उनके साथ नाइंसाफी करने लगो। दुश्मन के साथ भी नाइंसाफी और झूठ का काम नहीं होना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी शक्लें होती है जो बैठे बैठे हम झूठ के जरिए से अपने गुनाहों के दफ्तर को बढ़ाते हैं इसमें। तो झूठ की जो भी शक्ल हो, ये शक्लें तो कुछ हैं, इसके अलावा भी और शक्लें हैं जिसका मौका नहीं है। तो बहरहाल ये ख्याल रखना चाहिए कि झूठ एक बहुत बड़ा गुनाह है और उसका अंजाम दुनिया में भी खराब होता है आखिरत में भी खराब होता है। इसलिए झूठ से बचने के लिए एक तो अल्लाह का डर पैदा करना चाहिए दिल में, और ये एहसास रहना चाहिए हमारी हर बात अल्लाह के यहाँ नोट होती है, पर अल्लाह के यहाँ हमारे हर लफ्ज का हमें जवाब देना पड़ता है। दूसरे झूठ के सिलसिले में जो वकीदे आई है, सच्चाई के बारे में जो फसीलतें आई हैं, उसको बार बार पढ़ना चाहिए, उसका मुताला करना चाहिए। तीसरे झूठों की मजलिसों से दूर रहना और सच्चों की मजलिसों में शामिल रहना चाहिए। जैसे पिछले हफ्ते बताया गया था, सोहबत का असर पड़ता है, बुरों के साथ झूठों के साथ रहेंगे झूठी सिफत आएगी, अच्छों के साथ सच्चों के साथ रहेंगे तो सच्चाई अंदर आएगी। बहरहाल इस तरह की तरकीबें हैं जिससे हम सच्चाई का अपने आप को आदि बना सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे भी सच्चाई पर अमल करने की तौफीक दे और झूठ से बचाए रखे और आपको भी बचाए रखे। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।